paradontics, orthodontics, dental implant, cosmetic dentistry and much more. Warm and friendly atmosphere jahan aap apni zuban mein apni takleef bayan kar sakte hain. Aapke paas dental insurance hai ya nahi, koi masla nahi. Scarborough mein ek aur Mississauga ki do locations par aapko serve karte hain. Appointment ke liye abhi call kijiye 905-232-5678 Mississauga 416-757-9999 Scarborough.
क्या आपकी फैमिली में मसाइल चल रहे हैं और हालात आपको लेके जा रहे हैं डाइवोर्स की जानिब, या आपका प्यारा बिना विल लिखे या विल लिखकर आपको छोड़ के जा चुका है? विल के मुतालिक कोई भी काम हो या आपको चाहिए ट्रस्टीशिप सर्टिफिकेट, या आपकी रियल स्टेट क्लोजिंग नजदीक है और आप हैं एक तजर्बेकार लॉयर की तलाश में, इन तमाम कामों के लिए आपकी मदद के लिए एक बाएतमाद इदारा मलिक लॉ ऑफिस बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स मोहम्मद अतीक मलिक आपकी तमाम कानूनी मसाइल में आपकी रहनुमाई करेंगे. GTA में दो लोकेशंस, मिसिसागा 168 क्वीन स्ट्रीट साउथ यूनिट 201, इन स्कार्बरो 1825 मार्कम रोड यूनिट 205. कॉल टुडे मलिक लॉ ऑफिस 9052914455 9052914455.
खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो न सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं. और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं. और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है. आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है. 416-570-0157.
कहते हैं कि माया को खींचे माया कर कर लंबे हाथ. हैरिसन द मेजेस्टिक मॉर्गेजेस के साथ रेजिडेंशियल कमर्शियल मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग आपने करनी है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप ताल्लुक आते हैं, आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त भी हो जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे. हैरिसन जी बड़ी कमाल की तिकड़म लड़ा सकते हैं, बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का रेंज हो जाएगा. $228 से $1000 महीना कैसे बचा सकते हैं? कॉल हैरिसन नाउ 6472281000 हैरिसन ऑफ मेजेस्टिक मॉर्गेजेस.
इन सब कामों के लिए तो मुझे बैक होम ही जाना पड़ेगा.
कौन से काम?
वही बेटे की शादी सर पर है और ज्वेलरी का खास काम अभी तक नहीं हुआ.
बस इतनी छोटी सी बात, पायल ज्वेलर्स पे हर किस्म की ज्वेलरी है और वो स्पेशलाइज करते हैं इन सब में ही, दुबई, सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान और यहाँ की तमाम लेटेस्ट ज्वेलरी.
मुझे उनका एड्रेस बताओ, मैं आज ही ये काम जाके करवाती हूँ.
जी जी बिल्कुल, पायल ज्वेलर्स का एड्रेस है 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव यूनिट 42 ब्रैम्पटन. पायल उसके असलम भाई को कॉल करें ना एट
Bowie Drive West Brampton ya call karo 905-450-2828-905-450-2828.
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कड़ाही, शिनवारी गोट कड़ाही, निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस. ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका. 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट मिसिसागा यूनिट 3. ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800.
क्या आप या आपकी फैमिली डेथ, डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस जैसी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार है? अगर नहीं तो सन लाइफ की प्रदीप जी का नाम याद रखिएगा 416-894-5872.
जी हाँ, सलाह मशवरे और किसी भी पॉलिसी के रिव्यू में मैं प्रदीप सिंह आपकी पूरी मदद करूँगा.
ट्रस्ट विल बी ऑन एस चार्टर्ड लाइफ अंडर राइटर एंड कैनेडियन हेल्थ स्पेशलिस्ट मिस्टर प्रदीप फ्रॉम सन लाइफ. 416-894-5872.
और हर ट्यूजडे को
मेरे टॉक शो में जरूर शामिल हों।
अरे खैरियत तो है, सारा सामान बिखरा पड़ा है, कहाँ की तैयारी है?
हमारी पूरी फैमिली दूसरे शहर मूव हो रही है, समझ नहीं आ रहा किस तरह से ये मूविंग होगी।
आप परेशान ना हो, आपकी मूविंग का सिर्फ एक ही हल है, 786 मूविंग प्लस।
अच्छा वो कैसे?
786 मूविंग प्लस वाले अपार्टमेंट, हाउस, ऑफिस, स्टोरेज और कमर्शियल मूविंग में स्पेशलाइज करते हैं। मूविंग एंड डिलीवरी, पैकिंग एंड अनपैकिंग, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस, 24 आवर सर्विस, 7 डेज अ वीक, आवरली एंड फ्लैट रेट।
आपने तो हमारी मूविंग ही आसान कर दी, फौरन 786 मूविंग प्लस का नंबर दें।
जी जी बिल्कुल, 786 प्लस मूविंग के अमीन को आज ही कॉल कीजिए, 416-786-6000, 416-786-6000।
आयशा ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों, एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स, मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा, 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
विलेज टेस्ट पूरे ऑन्टेरियो का सबसे बड़ा हलाल सुपर रेस्टोरेंट है। कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, बारबेक्यू ट्राई करना चाहते हैं, कढ़ाई आइटम्स हैं एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स में बे इंतहा वेरायटी है। बेहतरीन फीस्ट इंजॉय कीजिए विलेज टेस्ट पर। आफ्टर मिसिसागा दे आर इन ओकविल एज वेल। विलेज टेस्ट, 9052323663। विलेज टेस्ट। कौन कहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां वक्त पर क्लेम अदा नहीं करती? एक और मिसकंसेप्शन कि लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी या फिर ट्रेवल इंश्योरेंस बहुत महंगी हैं। नहीं साहब, आप एक बार इंश्योर प्रो के फजल वदूद से बात कीजिएगा, 28 साल का अंडरराइटिंग का तजुर्बा है। लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, ट्रेवल इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस के मामले के लिए फजल वदूद ऑफ इंश्योर प्रो, 905-607-5000, 905-607-5000।
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ,
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज, 416-792-8792।
रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग, टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक।
बाय वन हियरिंग एड गेट वन 15% ऑफ, 416-792-8792। अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, 416-792-8792।
चांदनी बैंक्वेट हॉल,
इंटेलिजेंट चॉइस लोकेशंस, साउंड सिस्टम इनोवेशंस, चांदनी बैंक्वेट हॉल,
30 years ऑफ हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस, कॉर्पोरेट इवेंट, एग्जीबिशन, एक्सपो और एनी सेलिब्रेशन,
सारे पैकेज का नाम चांदनी बैंक्वेट हॉल, आज ही कॉल कीजिए 437-218-8734, chandnihalls.ca।
वेलकम बैक तमाम सामीन को जो 770 एम डायल पर सुन रहे हैं प्रोग्राम साजो आवाज। जनाब मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगी, जुड़ जाएंगी थोड़ी देर में, अभी थोड़ा सा मसरूफ हैं शाजिया मलिक साहिबा भी। जनाब अब से लेकर तकरीबन 7:30 बजे तक आपका और हमारा ऐसा साथ चलता रहेगा और हमेशा हम आपको बताते हैं कहीं आपकी गाड़ी जहां किसी जगह से गुजर रही है जहां कुछ छोटे मोटे गड्ढे आ रहे हैं और आपको सुनाई सही नहीं दे रहा तो एक नंबर डायल कीजिए 6478724900 पर आप डायल करेंगे तो हमारा रेडियो आपको क्रिस्टल क्लियर आवाज में सुनाई देगा। और अगर आपने मेरी तस्वीर भी देखनी है तो आपने eawaz.com पर जा सकते हैं, वहां हमारा रेडियो सुन सकते हैं और टेलीविजन देख सकते हैं, यानी आप मुझे भी देख लेंगे। इसके अलावा तमाम ही एडवर्टाइजर्स के नंबर आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएंगे। हमारा यूट्यूब चैनल ई आवाज रेडियो एंड टीवी के नाम से, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आता है तो इसको शेयर भी कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप उसमें क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं। हमारा आईपीटीवी तमाम ही आईपी बॉक्स पर आप इसको देख सकते हैं, अपने फेवरेट्स में ऐड कर लें इसको, पाकिस्तानी या आप उर्दू कैटेगरीज में जाकर ई आवाज टीवी को फाइंड कर सकते हैं और उसको अपने फेवरेट्स में डाल लें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको मुझे ढूंढना ना पड़े। आप मुझे ढूंढते रहेंगे, यार आमिर भाई आप आते हैं शाम में, खातून है वो न्यूज भी पढ़ती हैं, तो कहां गए कहां गए। तो ई आवाज टीवी पर सारा कुछ आपको ई आवाज टीवी पर मिल जाएगा, खबरें भी मिल जाएंगी यार। मतलब 5 मिनट लेट से सुन लोगे तो क्या हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, नहीं होगा जनाब, कुछ भी नहीं होगा। चले फिर भी प्रोग्राम में मैं आपके कहने पर शाजिया मलिक साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसी हैं आप?
WS में ठीक हूँ,
थैंक यू, वेलकम। कैसी गुजर रही है आपकी? आप भी थी, बताइए अपनी, आज सारा दिन काम
वैसे ही गुजर रही है। आज मैंने अपने मियाँ साहब को कहा कि देखो मैं तुम्हें बड़ा सताती हूँ, सॉरी, मुझे पता है मैं बड़ी बुरी हूँ। तो मियाँ साहब ने आगे से कहा
कुछ नहीं, बात बताओ।
उसने कहा तुम्हें अपने बारे में सारा कुछ पता ही है, तो तुम मुझे क्या बता रही हो?
100%
देख लो अपने दोस्त को कैसी बातें कर रहा है।
देखे सच बोल रहा है आदमी,
अच्छा,
जो भी कह रहा है आपसे, हमारा हाँ। भाई आपसे बातें कर रहा है वो सच ही कह रहा है।
अच्छा, ये सच है,
हकीकत है।
अच्छा अच्छा,
ये कोई फसाना नहीं है कि उन्होंने कोई स्टोरी समझा दी हो।
अच्छा,
क्योंकि बहुत ही मुश्किल काम है
हाँ।
कि वो तकरीबन 20-22 सालों से जो है निभा रहे हैं
हाँ।
स्पिरिट गोज़ टू हिम।
अच्छा अच्छा, अब ये तो हमसे पूछो कि कौन किसके साथ निभा रहा है, वो हमारे साथ
या आपकी तरफ की न्यूज है ना?
अच्छा, तुम्हारे पास उनके उधर की न्यूज है?
बेसिकली मेरा ये होता है कि आप हाँ। मिरर देखिए, मिरर में अगर आप देख रहे हैं
हाँ।
तो आपको सिर्फ अपनी ही शक्ल नजर आ रही होती है हाँ। लेकिन कोई मिरर के पीछे भी तो हो सकता है
हाँ।
तो आपने हमेशा मिरर के पीछे भी जाके देखना होता है।
अच्छा
अच्छा, मतलब आप ही नजर आ रहे हैं। मैं करते रहो, अपने आप को देखते रहो, मैं सही लग रहा हूँ, मैं सही लग रही हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रही हूँ, आप मेरे से बातें करते रहे सारी जिंदगी।
वैसे आमिर, मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले कहा था कि तुम रॉन्ग प्रोफेशन में हो, तुम्हें नौटंकी कंपनी किसी में होना चाहिए, तुम्हें ये। आज मैं तुम्हें एक और प्रोफेशन की जो है ना वो सीख दे रही हूँ।
हाँ।
मैं कह रही हूँ तुमने कभी सोचा है कि तुम कभी कोई एक बुक लिखो ड्रामे के ऊपर
हाँ।
और उसके ऊपर फिर पूरा एक ड्रामा बने, तुमने कभी सोचा है?
नहीं, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ पाकिस्तान में, ड्रामा लिखा हुआ मेरा।
अच्छा अच्छा, लिखा हुआ तो बस,
लेकिन मैंने उसको कभी एग्जीक्यूट नहीं किया।
एग्जीक्यूट कर लो उसको ना,
टाइम ही नहीं मिला,
क्योंकि तुम बहुत ज्यादा जो तुम अच्छी वाली प्यारी स्टोरियां बनाते हो ना, बहुत चलेंगी, मिलियंस कमाओगे तुम। तुम क्यों इधर बैठे हुए हो, ये जो है $1,000-1,200 की नौकरी के ऊपर, तुम जो है ना वो करो, तुम कहानियां लिखो, ड्रामे लिखो
हाँ।
और ड्रामे बनाओ,
और 1,200 मिलते हैं
ना। और उसके अलावा जो है ना, तुम खुद हाँ। भी अपने उस ड्रामे में काम करो
हाँ।
तुम इतने कोई कामयाब हो गए, वैसे भी तुम कहते तो हो ही मैं खूबसूरत आदमी हूँ, आप मेरी आवाज खूबसूरत सुनना चाहते हैं, मेरी सुरीली आवाज, तो वो यानी इस तरह का जो एटीट्यूड होता है ना हाँ। ये वो सलू भाई टाइप के लोगों का होता है। जिससे दुबई में एक दफा पूछा गया हाँ। कि यू नो अभी ये जो बुर्ज खलीफा बना है यहाँ पे, दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग, उसके ऊपर टॉम क्रूज ने आके फिल्म बनाई है, तो सलमान खान ने बड़ी उससे बेनियाजी से कहा कौन टॉम क्रूज
हाँ।
तो तुम्हारा भी एटीट्यूड कुछ वैसा ही है सल्लू भाई जैसा, तो इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम भी फिल्में ड्रामे ये करो, तुम बहुत कामयाब रहोगे।
मैं
सोचो इसके बारे में, सोचो।
मैं इंशाल्लाह सोचूंगा
हाँ हाँ,
लेकिन मेरा ऐसा कोई फिलहाल
हाँ,
ऐसा कोई प्लान नहीं है।
तुम और तुम्हें इसमें जोर लगाने की जरूरत नहीं है, तुम तो बस वो ड्रामा लिखना शुरू करोगे ना हाँ। ऐसा ड्रामा लिखा जाएगा कि लोग जो है हैरान से परेशान हो जाएंगे, और जब तुम खुद उस ड्रामे खुद एक्टिंग भी करोगे हाँ। मैं कहती हूँ तुम इतने हिट हो जाओगे कि लोग बोलेंगे भाईजान आप सिर्फ ड्रामे लिखो
हाँ।
और खुद भी ड्रामे करो।
इसीलिए मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत लेसन सीखा है अपनी लाइफ से।
अच्छा अच्छा,
और हमारे बुजुर्गों से भी मैंने ये लेसन सीखा है
हाँ।
जब भी इंसान कभी डूबा है ना, उसे करीबी नहीं डूबो है।
डूब
वाला नहीं डूबो सकता।
अच्छा अच्छा,
हाँ नहीं, हमेशा जब भी बड़ी बड़ी सल्तनतें डूब गई, बड़ी बड़ी रियासतें डूब गई, बड़े बड़े मुफस्सिर चले गए दुनिया से, बड़े बड़े वली चले गए,
क्या
ऐसे मुसव्विर
मुसव्विर
اب میں ہی نہیں بتاؤں گا مصور کیسے کہتے ہیں، خدا را ایسا نہ کرے میرے ساتھ،
اچھا
تو وہ سب چلے گئے دنیا سے، اور زیادہ تروں کے ساتھ جو سازش ہوئی نا وہ کوئی قریبی ہوتا ہے، دور والا نہیں ہوتا،
ان کو انگریز جو ہے نا، ہمارے انگریز اس کو بولتے ہیں اسپن ڈاکٹرز، جو آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ کو غلط مشورے دیتے ہیں،
وہ آج بھی ایگزٹ کرتے ہیں،
لیکن میں تمہیں بالکل صحیح مشورہ،
وہ بھی یہی کہتے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے،
دیکھو عامر تمہیں میں نے کہا ہے تمہیں زور لگانے کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے نا، وہ جنہوں نے کوئی وہ مشورے دیے ہوں گے اس میں بادشاہ سلامت کو بڑا زور لگانا پڑا ہوگا، سوچنا پڑا ہوگا، اچھا یہ اب میں کہ تمہیں اس میں زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دس کمز ڈراما کمز نیچرلی ٹو یو ہے نا،
بیسیکلی ہمارے استاد نے ایک اور بات سیکھی، وہ کہتے ہیں جو چیز جتنی آسانی سے آتی ہے وہ اتنی ہی آسانی سے چلی جاتی ہے،
لیکن تم تو خوبصورت آدمی ہو، آواز تمہاری
تقریباً 44-45 لگ گئے نا،
ہاں خوبصورت بننے میں، کچھ دن پہلے تو تم کہہ رہے تھے جب میں پیدا ہوا ہوں تو نرس آئی میری ماں کے پاس، اس نے کہا تمہارے گھر چاند پیدا ہوا ہے، آج تم نے اسٹیٹمنٹ پھر جتنے ویسے یو ٹرن تو بنا لینے والے، میں نے دنیا میں اتنے پولیٹیشینز بھی یو ٹرن لیتے ہوئے نہیں دیکھے،
آپ کو میں نے کل بھی ایک ایگزامپل دی تھی،
اچھا آپ ایگزامپل پہ آ جاؤ،
میں آپ کو بتاتا ہوں، کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہوتا ہے کیا ہے کہ نیوز جو ہے وہ فرنٹ پیج پہ ہی نہیں ضروری نیوز آ گئی، ہیڈ لائن پڑھ کے شور مچا دیا، لکھا ہوتا اکثر پاکستان میں جنگ اخبار یا اور جتنے امن اخبار آتا تھا نہیں ہیڈ لائن لکھی ہوتی تفصیلات صفحہ نمبر 5 پہ، تو آپ تو وہ 5 والے پڑھنے میں ہی نہیں ہیں، آپ نے ہیڈ لائن چل کے 5 گریڈ بلا لی،
ہم نے تو صرف ہیڈ لائن نہیں پڑھی، ہم نے آپ کا پاسٹ پریزنٹ سم پڑھ کے آپ کو یہ بات کہی،
وہ جو سینیریو تھا سچا واقعہ تھا، کیونکہ ماشاء اللہ جنت نصیب کرے ہماری ماں کو، وہ تھوڑی سی اب کلر بولوں گا تو لوگ کہتے ہیں ریسز ہے، لیکن ظاہر ان کا کلر ڈارک تھا، اور میرے والد صاحب
کمزور تھی، تم نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا پتلی دبلی سی
تھی، لیکن ان کا کلر ڈارک تھا، اور میرے والد صاحب جو ہے اللہ ان کو زندگی دے صحت دے، وہ تھوڑے نورانی ٹائپ کے گورے، مطلب فل میری طرح، تو اس پر نرس نے کہا تھا ان کو دیکھ کر کہ یہ بچہ آپ کا ہی ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا نرس کو، ان کے الفاظ میری ماں کے، انہوں نے مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے، انہوں نے ہم سے انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر رک جاؤ، اس کا باپ آئے گا تو تمہیں سمجھ آ جائے گی، تو یہ تھی کہانی، تو اس کو آپ پتہ نہیں کہاں، آپ صفحہ نمبر 5 پہ نہیں گئی، آپ نے ہیڈ لائن پڑھی،
نہیں نہیں،
اور
ہم نے صفحہ 5 ہی دیکھ کے تمہیں بتایا ہے کہ نرس نے کہا لو جی آپ کے گھر چاند ہوئے، میرا کہنے کا مطلب تم مطلب نہیں سمجھ رہے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اپنی اتنی تعریفیں کرتا ہوئے نا وہ اس غلط پروفیشن میں ہے، وہ ڈرامے میں جائے، کیونکہ ڈراموں میں جب وہ جائے گا نا تو اس کو 50 لوگ اور بھی کہیں گے تم بڑے خوبصورت ہو، تمہاری آواز بڑی سریلی ہے،
ضرورت ہی نہیں ہے،
تو میں اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہی تھی،
نہیں وہ آپ کا کانٹیکسٹ ہیڈ ہو گیا، بالکل فیل ہو گیا،
یعنی تم نے جو ہے ڈرامے صرف ہمیں دکھانے ہیں یہاں پہ،
نہیں ڈرامے نہیں یہ حقیقت ہے، لائف اٹ سیلف ا ڈراما، وی آر پلئنگ اور رول اینڈ وی ہیو ٹو گو بیک،
زیادہ فلاسفر بننے کی کوشش نہ
کرو، سچ بات کرو نا، جرنلسٹ کو ہضم ہی نہیں ہوتی،
نہیں یہ فلاسفی جو ہے نا یہ اپنی جیب میں رکھو، کیونکہ یہ فلسفی جو ہے نا یہ ادھر تمہاری زیادہ چلے گی نہیں، تمہیں بس جو کہا نا تم اس پہ عمل کرو، دیکھیں یا دیکھیں بھی نہیں بولنا، یہ رانا سناؤ لوگوں سے، دیکھیں
آپ جو جیب کی بات کر رہی ہیں نا تو اس پر میں پھر ایک ڈائلگ بول کے آپ پھر نیوز شروع کر لیں، وہ اللہ بڑے بول سے معاف کرے ٹچ وڈ، یہاں کے ہم سکندر چاہے تو رکھ لیں سب کو اپنی جیب کے اندر، 770 کو رکھتے ہوئے میں نے آپ کو،
آئے ہائے ہائے، اچھا تو اب میں نے آپ کو پھر سے کہہ رہی ہوں آپ ڈرامہ کر لو،
آپ سنائی سے پہلے کہ مجھے ارفا پا مائی بھائی کی کال آ جائے کہ بھائی کل سے تم گھر بیٹھو،
تمہاری ڈرامہ کر لو، تم ڈرامہ کر لو پلیز، ٹھیک ہے،
اچھی میٹھی خبریں سنائیں لوگوں کو، ملی ملی ٹائپ کی،
ٹھیک ہے،
جس کے کوئی وہ کوئی سر پیر
سائڈ افیکٹس نہیں،
سائڈ افیکٹ نہ ہو نا،
اچھا اچھا
بےچارے مطلب کل کو بیمار پڑ جائیں،
ہاں ہاں
تو خبریں سناتے ہیں،
اچھا اچھا آج بڑی خطرناک بات کی ہے ٹروڈو صاحب کے بارے میں،
معصوم آدمی،
معصوم آدمی،
جنتی آدمی،
جنتی، ہاں اچھا جی، دس مارننگ کا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی ڈاکٹر فیاض قریشی، ڈاکٹر فیاض قریشی جو ہے بہت زبردست قسم کی ڈینٹسٹری کی سروسز دیتے ہیں، تو اگر آپ کو اپنی کوئی بھی آپ کے دند چند پیلے ہیں تو آپ ضرور جائیں جناب ڈاکٹر فیاض قریشی کے پاس، ان کے 3 کلینکس ہیں، 2 مسز ساگا میں اور اسکاربرو میں، ان کا جو مسز ساگا کا کلینکس ہیں ان کا نمبر ہے 9052325678، اور جو اسکاربرو کا جو کلینک ہے اس کا نمبر ہے 4167579999، اینڈ جناب کیو ٹی ایل اگر آپ کو یہاں پہ اپنا آئل، اپنا نہیں اپنے ٹرک کا اگر آئل چینج کرانا ہے تو آپ ان کے پاس ضرور جائیں 12 سپٹمبر کو خاص طور پہ، کیونکہ یہ $125 آف دے رہے ہیں آپ کا آئل چینج کر करने के ऊपर, नेपनी की जो इनकी लोकेशन है उसके ऊपर आपने जाना है, एग्जिट 579 हाईवे 401। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनकी जो साइट है quicktrucklube.com उस पर जाके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जनाब लेम्फाय, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि एंड्रॉयड और एप्पल पे इनका जो ऐप है ये आप डाउनलोड करो, और अगर आपके पास आपकी जेब में आमिर की तरह $250 है तो आपको अगर भेजना है पाकिस्तान तो आप इनको भेजें और आपको $30 का कैश बैक मिलेगा। ठीक है, तो आपने प्रोमो कोड यूज करना है eAwaz10 और जीरो इसके ऊपर ट्रांसफर फी है, तो आप प्लीज जरूर इनको पैसे भेजें अपने प्यारों को लेम्फाय के थ्रू और आपके जो पैसे हैं मिंटों स्किंटों में पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, ओके जनाब, हम शुरू करते हैं अपनी खबरें। जगमीत सिंह साहब जो हैं, कल हमने आपको बताया था ना उनके बारे में, अपने जंदी ट्रूडो साहब के बारे में, कि वो अपना कॉकस के साथ मीटिंग शुरू कर रहे हैं, तो अब जगमीत सिंह साहब भी मॉन्ट्रियल में आज से अपना 3-day स्ट्रैटेजी जो उनको प्लान करना है अब आने वाले दिनों में, वो उसके लिए वो अपना एमपीज के साथ जो है एक कॉकस मीटिंग कर रहे हैं। और इन्होंने जो है एनडीपी के एमपी अब अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं ट्रूडो साहब से। 23 एनडीपी के जो एमपीज हैं वो अब बैठेंगे यहां पे इनके साथ और बातचीत करेंगे। एनडीपी के जो डॉन डेविस हैं उन्होंने मीडिया को बताया कि जी, उन्होंने कहा जी कि ये जो ट्रूडो है उसके बारे में बड़े उन्होंने सख्त लफ्ज यूज किए, उन्होंने कहा रेडियो एक्टिव ब्रांड जो है ये बनता चला जा रहा है, तो हम बड़े खुश हैं कि हम इससे अब दूर जा रहे हैं। इसके अलावा एनडीपी जो है वो अब कह रही है कि ये जो बाय इलेक्शन यहां पर होने वाले हैं उसके लिए भी हमको स्ट्रैटेजी एक बनाने की जरूरत है। जो सिंह साहब हैं वो अब जब से इन्होंने ये जो सप्लाई एंड कॉन्फिडेंस का डील था लिबरल्स के साथ, जब से ये गया है लास्ट वीक इनसे, तो उस वक्त से जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है कनाडा का वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया। कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो बड़ा सख्त अब एनडीपी को कह रही है कि भई तुम जून 2025 का वेट मत करो नेक्स्ट इलेक्शन का, तुम जो है फौरन यहां पर इलेक्शन जो है वो बुलाओ। ब्लॉक क्यूबेक जो है उन्होंने कहा जी कि नहीं, बैलेंस ऑफ पावर रखने के लिए हम जो है ये कॉन्फिडेंस वोट अगर आएंगे तो हम यानी के सहारा देंगे इनको, इनके साथ लिबरल्स के साथ खड़े रहेंगे, यानी कि वो अर्ली कोई भी इलेक्शंस चाहता नहीं है। एनडीपी के एमपीज जो हैं वो कहते हैं कि हम बड़ा लाइट फील कर रहे हैं और ये जो टू पार्टी पैक था इनसे हम बाहर हैं। एनडीपी के जो एलिस्टर मैकग्रेगर हैं उन्होंने कहा जी कि मुझे पता चला है कि लोग बड़े खुश हैं, यानी कि जो एनडीपी के जो लोग हैं और हम इनसे जो डिस्टेंस कर रहे हैं ये अच्छा है। वो कहते हैं जी मैं बड़ा प्राउड हूं कि जो डील हमने लिबरल्स के साथ की थी उसने बड़ा ज्यादा अकम्पलिशमेंट्स किए हैं, और जो पार्टीज जो होती हैं वो जो हमारी डील थी वो बड़ी अनयूजुअल थी, क्योंकि ज्यादातर पार्टीज जो हैं वो अलहदा ही करती हैं, लेकिन ये जो माइनॉरिटी डायनेमिक्स थे इसके अंदर जो है हम अब जब वापस आए हैं तो हम खुश हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये ना तो गैम्बल है ना तो कोई रिस्क है, और अब हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में हमने अपना क्या रोल प्ले करना है। इसके बाद जो सिंह साहब थे आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने अपने जो भी कोई ऑब्जेक्टिव थे आने वाले दिनों के लिए और प्रायोरिटीज थी उनका जिक्र किया। जब ये जिक्र कर रहे थे तो उस वक्त ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड साहब जो थे उन्होंने कहा जी कि सिंह साहब जो मर्जी कह लें या कोई भी जो है फेडरल इलेक्शन अब अर्ली ट्रिगर नहीं करेंगे और ही इज जस्ट ब्लोइंग स्मोक। हैमिल्टन सेंटर के जो एनडीपी एमपीपी हैं मैथ्यू ग्रीन, उन्होंने कहा वाह 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 क्या बात है फोर्ड साहब की। ये फोर्ड साहब कह रहे हैं जिन्होंने अपना पूरे का पूरा करियर ही अपने फैमिली के लास्ट नेम के ऊपर बिल्ड किया है, और इनके तो अपने खिलाफ जो है एक करप्शन के अंदर एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बैठी हुई है, तो ये हमारे बारे में कैसे इस तरह की कोई बात कर सकते हैं। तो यानी कि अब गर्मा गई है यहां पे भी, जो बहुत ही ठंडे मुल्क में ठंडी ठंडी पॉलिटिक्स चल रही थी ना, तो ये अब गर्म होने लगी है। फेडरल गवर्नमेंट ने कहा जी कि कनाडा चैलेंज करेगा ये जो यूएस ने सॉफ्ट वुड लंबर के ड्यूटीज जो बढ़ा दिए हैं उसके लिए। इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्टर मैरी इंग जो हैं उन्होंने कहा कि कनाडा स्टेप्स ले रहा है टू लॉन्च टू लीगल चैलेंजेस अंडर कनाडा यूएस मेक्सिको अग्रीमेंट, और उन्होंने कहा जी कि ये ड्यूटीज बहुत ही अनफेयर और अनजस्ट हैं और ये हार्म करती हैं कैनेडियन इंडस्ट्री को, इसके अलावा हाउसिंग की कॉस्ट को बहुत ज्यादा इंक्रीज करेंगी। अगस्त में यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट जो था उसने डबल कर दिए थे ड्यूटीज ऑन सॉफ्टवुड लंबर, और ये जो फिफ्थ एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू ऑफ ड्यूटीज किया था इसमें इन्होंने रेट 14.5% कर दिया था फ्रॉम जस्ट अबाउट 8%। अब जो है ये इनके बीच में डिस्प्यूट है, और ये डिस्प्यूट वैसे तो काफी अर्से से था लेकिन दोनों जो कंट्रीज थे यानी कि कनाडा यूएस
कुछ एक वर्केबल प्लान बनाते थे, लेकिन इस दफा तो वर्केबल प्लान कुछ नजर नहीं आ रहा है। सॉफ्टवुड लंबर जो है वो बड़ा ही एक और कंटेंशियस इशू हो सकता है रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में भी अहेड ऑफ यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन नवंबर। तो उस सिलसिले में जो है ये आज कनाडा कह रहा है कि हमको एक पॉलिसी इस पे बनाने की जरूरत है, लेकिन जाहिर है कि हाउसिंग फिर बेतहाशा एक्सपेंसिव यहां पे हो जाएगी। टोरंटो पुलिस जो है उसने अब 4 लोगों को कस्टडी में लिया है इन अ स्ट्रिंग ऑफ नाइट टाइम ब्रेक-इन्स एंड एंटर्स जो कि हो रहे थे टोरंटो में और डरहम में इन द लास्ट 9 मंथ्स। और अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेटर्स बिटवीन नवंबर 26, 2023 टू अगस्त 23, 2024 टोरंटो पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स जो हैं डरहम रीजनल पुलिस सर्विस जो है उन्होंने तकरीबन 27 कॉल्स फॉर नाइट टाइम ब्रेक-इन्स एंड एंटर्स जो हैं वो जो अटेंड की थी इन रिटेल एस्टैब्लिशमेंट्स। ये वो कहते हैं जी कि इसमें इन्होंने जो इंसिडेंट्स थे वो रिपोर्ट किए गए थे डिविजन्स 41, 42 एंड 43 इन स्कार्बरो, और मास्क्ड जो सस्पेक्ट्स थे वो एंटर होते थे बहुत सारे ये कैनबस और इलेक्ट्रॉनिक्स और सेल फोन के स्टोर्स के अंदर। और एक केस में तो इन्होंने जो है गोली वोली भी चलाई थी, और ये जो कैनबस था वर्थ 50,000 कैनबस रिलेटेड प्रोडक्ट्स, सेल फोन, एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स चोरी भी किए थे। ये सस्पेक्ट्स जो हैं ये फिर भाग जाते थे फौरन ही, एक गाड़ी उनके लिए बाहर वेट कर रही होती थी उसमें बैठ के। तो ये जो एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई थी उसमें फिर 4 लोग आइडेंटिफाई किए गए थे जिनको फिर अरेस्ट किया गया है और चार्ज किया गया है इसके लिए। इसके अलावा जनाब आप रहते तो वैसे कनाडा में हैं, लेकिन आपको लगेगा कि हम शायद आपको कराची की स्टोरी सुना रहे हैं। नहीं भाईजान, ये कनाडा हमारे की स्टोरी है। दूसरी जो स्टोरी है टोरंटो पुलिस सर्विसेज की, उन्होंने कहा है जी कि ये जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चला हुआ है या जो दूसरे इवेंट्स चल रहे हैं यहां पे डाउन टाउन कोर के अंदर, उसमें बहुत सारे पॉकेट मार आ गए हैं, यानी कि पिक पॉकेट्स जो हैं वो लोग फिर रहे हैं और थेफ्ट जो हैं बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं यहां पे एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में। एक सेफ्टी अलर्ट जो है टोरंटो पुलिस सर्विस ने किया है, उन्होंने कहा जी कि ये पिक पॉकेट स्टाइल थेफ्ट जो है ये हो रहे हैं ये डाउन टाउन कोर में, तो आप जो है सावधान यानी कि रहें। एक प्रेस रिलीज जो इनकी आई है उसमें उन्होंने पब्लिक को कहा है कि अपने सराउंडिंग्स में भी देखते रहें और अपने बिलोंगिंग्स जो है सेल फोन वगैरह और वॉलेट्स उनका हर वक्त ख्याल रखें। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि अगर आपके जो थेफ्ट हैं अंडर $5,000 हैं तो वो जरूर टोरंटो पुलिस सर्विसेज के वेबसाइट पे जाके आप लोग रिपोर्ट करें। तो उसमें जनाब ये जो है आप थोड़ा अगर जा रहे हैं डाउनटाउन तो आपको थोड़ा सावधान जैसे मैंने कहा रहने की जरूरत है। यूएस ने आज एक्यूज किया है जी फॉर्मली ईरान को कि वो सप्लाई कर रहा है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स टू रशिया फॉर यूज इन जो ये यूक्रेन की वॉर है इसके अंदर। इसमें जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन जो है वो आज बात कर रहे थे ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लेमी के साथ ड्यूरिंग हिज विजिट टू लंदन, और उन्होंने कहा जी कि रशिया जो है उसने अब ये बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स के शिपमेंट्स लिए हैं जो कि ये यूक्रेन और यूक्रेनियंस के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं, और ये जो है ये बिल्कुल सही नहीं है। ईरान ने ये सारी की सारी चीजों को डिनाई किया है। ईरान का जो मिशन है यूनाइटेड नेशंस में उसने अपनी कहा है स्टेटमेंट के अंदर कि ईरान ये जो मिलिट्री एड उन पार्टीज को जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होती है जिसके अंदर ह्यूमन कैजुअलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करती, खासतौर पर वो पार्टीज जो सीज फायर के लिए निगोशिएट नहीं करती क्योंकि हम इसको इनह्यूमन कंसिडर करते हैं। ना सिर्फ हम बल्कि हम दूसरों को जो कि कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आर्म्स दे रहे हैं उनको भी कहते हैं कि वो बाज रहे। ईरानियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है नसर कनानी, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान में कहा कि वो लोग जो हमको एक्यूज कर रहे हैं कि हम आर्म्स रशिया को दे रहे हैं वो तो खुद सबसे बड़े सप्लायर हैं आर्म्स के दुनिया के अंदर जहां पे कॉन्फ्लिक्ट है, और तेहरान का कुछ लेना देना नहीं है यूक्रेन की वॉर के साथ। क्रेमलिन के जो स्पोक्स पर्सन है दमित्री पेशकॉफ, उन्होंने भी आज बड़े गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा जी कि ये सारा कुछ जो कोई भी चीजें मीडिया में आती हैं इस सबका इन्फॉर्मेशन का सच होना भी कुछ ठीक नहीं है। इसके साथ साथ आज जिस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब ने ये सारी बातें कही और उन्होंने यूके को भी कहा कि हमको एक प्लान बनाने की जरूरत है इकट्ठे, उसके बाद साथ ही यूएस, यूके, फ्रांस और जर्मनी ने अनाउंस किया कि वो ईरान के अगेंस्ट जो है सैंक्शन बिठा रहे हैं। फ्रांस, यूके और जर्मनी है, उन्होंने कहा जी कि हम तो अब एक पूरा स्ट्रांग रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं विद यूरोपियन कमीशन एंड यूरोपियन यूनियन एंड इंटरनेशनल पार्टनर्स, और हमारी जो भी कोई बायलैटरल एड डील्स हैं ईरान के साथ वो भी हम खत्म करेंगे। तो मतलब ईरान को, चाइना को, ये दो तीन इनको मुल्क जो है वो नजर आते हैं जिसको कॉन्स्टेंटली ये दीवार के साथ लगाते हैं और खुद अपनी जो है वो गिरेबान में झांक के नहीं देख रहे हैं कि भाई हम क्या करें। ईरान को कह रहे हैं तुम रशिया को भाई क्यों वेपन्स दे रहे हो, वॉर बढ़ती जा रही है यूक्रेन में, तो भाईजान आप क्यों देते जा रहे हो वेपन्स इसराइल को, आपकी वजह से भी तो गाजा के अंदर जो है 138,000 के करीब बंदा जो है वो मर गया है। आप तो कहते हैं 40,000, इंडिपेंडेंट्स जो है वो कहते हैं 138, तो वो आपको नजर नहीं आ रहा, वहां पे आपको ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी नहीं नजर आ रहे, वॉर क्रिमिनल्स भी नहीं नजर आ रहे, वॉर क्राइम्स भी नहीं नजर आ रहे, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी भी नहीं नजर आ रहे। जिधर ईरान और चाइना आ जाता है वहां पे आपको ये सारे जो है क्राइम्स और ये नजर आना शुरू हो जाता है। पाकिस्तान की बात होती है तो आपको टेररिज्म याद आ जाता है। वो आप क्या कर रहे हो भाई, आप भी तो यही कुछ कर रहे हो, ये जो इतना ज्यादा पसला दे रहे हो इसराइल को, ये तो टेररिज्म ही तो फैला रहा है वो इलाके के अंदर, और क्या कर रहा है वो। लेकिन जाहिर है कि अब चूंकि आपका एला है तो आप और आप वेपन्स दे रहे हैं तो आप अपने आप को थोड़ा इतराज करेंगे। एनीवेज कोई बात नहीं है, ये आप ही ने सेइंग बनाई होती है व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो उस दिन से डरो अल्लाह से आप सब। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब जो है, इसके अलावा उन्होंने, लोगों ने जब उनसे पूछा कि भाई आपके अपने खुद के अमेरिकन भी तो इसराइल के अंदर मर रहे हैं, तो उसके ऊपर इन्होंने बात करते हुए कहा कि इसराइल मिलिट्री जो है उसको एक ओवरऑल जो है ओवरहॉल करना पड़ेगा अपनी पॉलिसीज का ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में। ये बात उस वक्त हुई जिस वक्त एंथनी ब्लिंकन साहब से पूछा गया कि ये जो बहुत फेटल शूटिंग हुई थी जिसमें कि एक अमेरिकन प्रोटेस्टर जो है वहां पे सेटलमेंट एक्सपेंशन के खिलाफ जो कि सिर्फ रैली के अंदर मौजूद थी, तो वो उसकी डेथ हो गई है, उसके बारे में आपने क्या कहना है। तो इसराइल ने उसके बारे में कहा था कि वी आर वेरी सॉरी, इट वॉज एक्सीडेंटल। एसनूर एसगी एगी 26 ईयर्स उनकी एज है और वो टर्किश अमेरिकन थी। अभी जो फ्राइडे के प्रोटेस्ट हो रहे थे बेथा विलेज के अंदर नियर नेबलस, उसके अंदर वो जो थी वो खड़ी हुई प्रोटेस्ट कर रही थी सेटलर्स के अंगेंस्ट, जबकि उनको गोली मार के मार दिया गया था। और ये अटैक जो था, कहा गया है कि ये उन्होंने फार राइट ज्यूइश सेटलर्स जो है उन्होंने किया। ब्लिंकन साहब जो कि अभी लंदन में थे और बात कर रहे थे डेविड लैमी के साथ, वहां पे लंदन में इनको रिपोर्टर्स ने पूछा था कि भई ये जो इसकी डेथ हुई है इसके बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एब्सोल्युटली अनप्रोवोक्ड और अनजस्टिफाइड है। कोई एक भी बंदा जो कि रैली अटेंड कर रहा है, जो कि अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच शो कर रहा है, उसको मरना नहीं चाहिए। तो हम इजरायली डिफेंस फोर्सेज को कहते हैं कि वो उनको मेजर फंडामेंटल चेंजेस करनी पड़ेंगी अपने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के अंदर। आपको पता ही है कि दो जो अमेरिकन सिटीजन हैं वो अभी तक इजरायली जो मिलिट्री है वो मार चुकी है, और उसने कहा जी कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इजरायली डिप्लोमैट्स जो हैं इसके अलावा वो अब चूंकि वो देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा पब्लिक सेंटिमेंट जो है इनके खिलाफ आ गया है, और जो है ये अब इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो अब वो अमरीका के अंदर एक पूरी लॉबी बना रहे हैं कि यूएस कांग्रेस जो है उसको कैसे राम किया जाए। और जो है ये, और उनको ये भी कहा जाए कि साउथ अफ्रीका जो इसराइल के अगेंस्ट क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का केस लेकर आया हुआ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसको भी कैसे हटाया जाए वहां से। तो अब अभी तो इलेक्शन का टाइम है, अभी तो खैर कुछ नहीं होगा, जो नई गवर्नमेंट आएगी शायद वो आपके साथ काम करे। और आमिर साहब आज क्या है, आज क्या है, आज 10th of September है, तो मैं आपको भी से बता रही हूं कि कमला हैरिस जीतेंगे।
ठीक है, हाँ। इस पर आप फिर आप मेरा भी वोट नोट कर लें,
हाँ।
रिकॉर्ड पे आ जाए,
हाँ। कि ट्रंप जीतेगा
तो मुश्किल है।
अच्छा चलो ठीक है, नहीं ये मुश्किल इजी ये फिलॉसफी नहीं, मैंने कहा ना ना ड्रामा ना फिलॉसफी।
आपने जिस तरह से
यस और नो बोलो, यस और नो बोलो, नहीं है तुम्हारा, तुम्हारी तरफ से अब नहीं है, नो है, वो नहीं जीतेगी ट्रंप, यानी कि जीतेगा। अच्छा जी चलो ठीक है, ओके चलो सही है, तो जनाब ये, अच्छा जनाब जो है ये प्रिडिक्शंस भी कुछ आ गई हैं जो मेरी प्रिडिक्शन के साथ मिलती हैं। यूएस प्रेसिडेंशियल हिस्टोरियन हैं जो कि पिछले 40 साल से प्रिडिक्शंस जो भी करते हैं ना कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अमेरिका का ये होगा, वो हमेशा उनकी ठीक आती है। यानी कि अगर उन्होंने 10 प्रिडिक्शंस की हैं ना, तो उसमें से 9 जो थी वो करेक्ट आई थी। उन्होंने प्रिडिक्ट उन्होंने भी किया है कि कमला हैरिस जो है वो जीतेगी नवंबर के इलेक्शंस में। एलन लिचमैन इनका नाम है, और उन्होंने कहा जी हैरिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मिक्स्ड अफ्रीकन एंड ईस्ट एशियन डिसेंट टू बिकम द यूएस प्रेसिडेंट। और उनकी काफी सारी, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वो करते आ रहे हैं सिंस 1984, प्रिडिक्शंस और उनकी प्रिडिक्शंस 10 में से 9 हमेशा ठीक होती हैं। उन्होंने कहा था कि रिपब्लिकन जॉर्ज डब्ल्यू बुश वर्सेस डेमोक्रेट एल गोर जो था उसके अंदर उन्होंने सिर्फ एक ये इनकी गलत आई थी प्रिडिक्शन, जिसमें उन्होंने कहा था कि एल गोर जो है वो जीतेगा, लेकिन इस पर उनका कहना यह है कि फ्लोरिडा जो था उसने मेसअप किया था सारा इलेक्शन, उसकी वजह से यह हुआ था। अब ये प्रिडिक्शंस कैसे करते हैं, ये प्रिडिक्शंस करते हैं 13 कीज ऑफ व्हाइट हाउस, चाबियां 13 चाबियां जो है व्हाइट हाउस में उसके ऊपर, जिसमें कि वो कहते हैं जी हम एग्जामिन करते हैं स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस ऑफ इनकमबेंट पार्टी रादर देन जो ये सर्वेज आते हैं और जो पॉलिटिकल पंडित्स कहते हैं, वो कहते हैं जी कि अगर इनमें से 6 चाबियां जो हैं वो व्हाइट हाउस में जो पार्टी बैठी होती है उसके खिलाफ हो जाते हैं तो वो लूज कर जाते हैं, और अगर जो है वो 6 से कम चाबियां जो हैं कीज जो हैं नेगेटिव में जाती हैं तो फिर वो जीतते हैं। अप्रैल 1982 में भी उन्होंने बड़ा राइटली प्रिडिक्ट किया था कि रोनल्ड रीगन जो है री इलेक्ट करेंगे, जबकि रीगन साहब के जीतने के कोई भी चांसेस नहीं थे। इस वक्त दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन आया हुआ था और उनकी रेटिंग्स जो थी अप्रूवल रेटिंग्स बिल्कुल जमीन पर आई हुई थी, फिर भी वो जीत गए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि जी हिलरी क्लिंटन नहीं जीतेंगी एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। तो उन्होंने कहा जी कि हिलरी क्लिंटन का भी आपको पता ही है कि वो तमाम डिबेट्स जो हैं वो जीत रही थी और फिर उसके बाद 2016 में ट्रंप से हार गई, जैसा कि इसने कहा था। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जॉन कैरी साहब जो हैं वो सारी डिबेट्स जीत रहे थे, लेकिन इन्होंने प्रेडिक्ट किया था जॉर्ज बुश जो हैं वो जीतेंगे, तो जॉर्ज बुश जो थे वो जीते। तो आज चूंकि डिबेट होने वाली है ट्रंप साहब की हैरिस के साथ, तो उसके अंदर जब मुद्दे डिस्कस हो रहे थे कि जी ये क्या क्या करेंगे, ईरान, चाइना, अबॉर्शन, इमिग्रेशन, गाजा वॉर एंड यूक्रेन का वॉर, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि आपको क्या लग रहा है कौन ज्यादा स्ट्रांग आएगा, तो उसी पे वो कह रहे थे कि ये डिबेट से या ये सर्वे से कुछ भी नहीं होता है और मेरा प्रिडिक्शन है कि लेस देन 6 नेगेटिव कीज हैं इनके पास, तो इसलिए कमला हैरिस जो है वो जीतेंगी नवंबर का इलेक्शन। तो जनाब ऐसे जर्मनी जो है उसने आज अनाउंस किया है कि वो जो लैंड बॉर्डर्स है अपने उसको बहुत ज्यादा उसके ऊपर अब कंट्रोल्स कर रहा है, क्योंकि इररेगुलर इमिग्रेशन बहुत है, बहुत सारे लोग बोट्स पे बैठ के आते हैं इधर उधर से और फिर उसके बाद जो है जर्मनी में घुस जाते हैं। वो कहते हैं जी कि जर्मनी के अंदर इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म जो है वो बेतहाशा उससे पब्लिक को थ्रेट है, क्योंकि पिछले दिनों में जो भी कोई अटैक्स हुए हैं उसके अंदर बहुत काफी सारों में मोस्टली के अंदर मुस्लिम्स पकड़े गए हैं जो कि इलीगली यहां पे आए थे। उन्होंने कहा जी कि ये यूरोपियन शेंजन जो शेंजन जोन जो है फ्रॉम सितंबर 16th टिल नेक्स्ट सिक्स मंथ बिल्कुल यहां पे सख्ती रहेगी और यहां से आने वाली जितने भी माइग्रेंट्स जो हैं उन सब के ऊपर सख्ती से देखा जाएगा और उसकी जो है वो जांच की जाएगी। ये डिटेल्स जो आज इंटीरियर मिनिस्टर नैंसी फ्रेजर जो है उन्होंने फेजर ने दी हैं और उन्होंने कहा जी कि हमको जो है अथॉरिटीज को मौका मिलेगा कि वो ये माइग्रेंट्स को रिजेक्ट करें जर्मन बॉर्डर्स के ऊपर, आपने आना है जर्मनी में सही तरीके से आए और हम इसीलिए रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं और अपना स्टैंस भी टफ कर रहे हैं, जिसको कि आज एक्सपर्ट्स ने बहुत ज्यादा उसके ऊपर एतराज किया क्योंकि बहुत सारी ये जो इररेगुलर माइग्रेशन है इसने मुल्क में तो प्रॉब्लम पैदा किया और गवर्नमेंट के लिए भी, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि अगर ये लोग लुटे पुटे मिडिल ईस्ट से या किसी और इस तरह के कंट्रीज से आ रहे हैं तो आप उनको अगर ना बोलेंगे तो फिर वो किधर जाएंगे। चांसलर ओलाफ शोल्स जो हैं उनकी गवर्नमेंट अब स्ट्रेंथन करना चाह रही है इंटरनल सिक्योरिटी और वो कहते हैं जी कि हम यूरोपियन कमीशन को भी और अपने नेबरिंग कंट्रीज को भी बता देंगे कि हम अब अपने मुल्क में इलीगल माइग्रेंट्स को एंटर नहीं होने देंगे, तो अगर आप करना चाहते हो आप कर लो, हम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है जी, ऐसा है। और आमिर साहब आज की सीएनबीसी की ये रिपोर्ट खास आपके लिए, ठीक है जी, खास आपके सुनने के लिए है कि दुनिया के जितने अमीर लोग हैं ना वो कनाडा में नहीं आ रहे ये न्यूज है आपके लिए। अच्छा, बहुत बड़ी न्यूज है,
हैं? हम उनको बुला ही नहीं रहे।
अच्छा, हम मिलियनर्स को नहीं बुला रहे, हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ फकीर चाहिए। हाँ ठीक है, चलो हमें फकीर चाहिए। अच्छा जी, सीएनबीसी की जो ये आज रिपोर्ट आई है इसमें बहुत बड़े जो इंटरनेशनल एडवाइजरी फर्म्स हैं जैसे कि हेनली एंड पार्टनर्स, उनके मुताबिक यूएई जो है वो एक्सपेक्टेशंस एक्सीड करेगा टू अट्रैक्ट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। वो कह रहे हैं जी कि दुबई के अंदर 6,700 मिलियनेयर्स इस साल के आखिर तक जाके सेटल हो जाएंगे। यूएई हैज बीन नेम्ड द वर्ल्ड्स टॉप वेल्थ मैग्नेट वो द थर्ड ईयर इन रो, पिछले 3 साल से टॉप डेस्टिनेशन है यूएई, जहां पे के दुनिया के मिलियनेयर्स जो है वो जा रहे हैं और वो कहते हैं जी कि दे आर जस्ट जो है वो अहेड ऑफ देयर राइवल यूएस, जहां पे के 3,800 मिलियनेयर्स जो हैं वो आएंगे 2024 में। और वो कहते हैं जी कि दुबई का जो टैक्स फ्री हब है, उसके सैंडी बीचेस हैं, उसका लग्जूरियस लाइफस्टाइल है, और जिस तरह से वो लोगों को ईज ऑफ बिजनेस देता है, तो दुनिया के अमीर तरीन लोग इंडिया, मिडल ईस्ट, रशिया, अफ्रीका से जो है आके दुबई के यूएई के अंदर सेटल हो रहे हैं। वो कहते हैं जी कि यूएई के अंदर जो है तकरीबन 116,500 मिलियनेयर्स वो हैं जिनकी के वर्थ जो है 1 मिलियन यूएस डॉलर के पास है। 308 सेंटी मिलियनेयर्स हैं जिनकी के वर्थ आमिर साहब 100 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा है। 20 बिलियनेयर्स हैं जिनकी के वेल्थ ओवर 1 बिलियन यूएस डॉलर्स है, और ये शो करती है ग्रोथ ऑफ 77% इन द डेकेड बिटवीन 2013 से 2023। वो कहते हैं जी कि चाइना जो है इट इज द बिगेस्ट मिलियनेयर लूजर, लोग निकल निकल के चाइना से जो है मिलियनेयर्स वो जा रहे हैं। तो उसने चाइना ने एग्जिट देखा है 15,200 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का दिस ईयर कंपेयर टू 13,800 इन 2023। और इसके अलावा वो कहते हैं जी कि बहुत सारे रशियंस जो हैं वो भी निकल निकल के जा रहे हैं। 1,000 रशियंस जो हैं वो अभी इस साल में गए हैं कंपेयर टू 8,500 इन 2022 एंड 2,800 इन 2023। साउथ कोरिया ऑल्सो हैज लॉस्ट 1,200 मिलियनेयर्स कंपेयर टू 800 इन 2023। तो जनाब दुनिया के सारे मिलियनेयर्स किथे जा रहे हैं आमिर जी? चलो चलो दुबई चलो है। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट है, और ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरेबिया का 1.3 ट्रिलियन रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो कि अगले 8 साल में पूरे होने हैं, दे आर वेरी मच लाइव एंड किकिंग अंडर द विजन 2030 जो कि मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरेबिया के लिए दिया है। और उन्होंने कहा जी कि ना सिर्फ ये बल्कि इस साल जो है वो और भी ज्यादा तरक्की कर रहा है, लोग यहां पे आना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं। ये पिछले साल जो था 4% अप था, और पिछले साल से 4% अप है ये जो इनके ये जो अट्रैक्ट कर रहे हैं ये भी। वो कह रहे हैं कि यहां पे बेशुमार कोई 1 मिलियन रेजिडेंशियल यूनिट्स बना रहे हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं लाइक नियोम ऑन रेड सी कोस्ट, 164 बिलियन वर्थ ऑफ रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं इन्होंने जो दिए हैं सिंस 2016 व्हेन सऊदी प्रिंस मोहम्मद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ये अपनी स्ट्रेटजी 2030 जो था विजन 2030 अनवेल किया था। उन्होंने कहा जी इसमें जो लार्जेस्ट चंक है 28.7 बिलियन का वो तो नियोम को जाएगा, नेशनल हाउसिंग कॉरपोरेशन जो है उसको जा रहा है 12 बिलियन यूएस डॉलर्स, डेवलपमेंट ऑफ दीरिया गेट जो है उसके ऊपर 9 बिलियन यूएस डॉलर्स लगेंगे, एंटरटेनमेंट सिटी जो यहां पे बन रही है ऑफ किदिया इन रियाद उसके ऊपर 7 बिलियन यूएस डॉलर्स लगाए जाएंगे, और मेजोरिटी ऑफ ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये कंप्लीट हो जाएंगी बिटवीन 2028 टू 2030। और वो कहते हैं जी कि इसीलिए सऊदी अरेबिया भी अब वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन मार्केट जो है वो बनता चला जा रहा है। हैं जी तायर साहब, सुन रहे हैं आप? चलो ठीक है आमिर साहब, अच्छी बात है, सुनो और जो है वो एंजॉय का मजा लो। अच्छा जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय विलेज टेस्ट। विलेज टेस्ट जो है आपको पता ही है ऑन्टेरियोज लार्जेस्ट लाल पाकिस्तानी बफे है, दो इनके रेस्टोरेंट्स हैं, एक मिसिसागा में, उसका नंबर है 9052323663, और एक है जनाब ओकविल में, और इसका नंबर है 9052262294। आप उधर जाएं और एंजॉय का मजा लें, खाने बड़े मजे के हैं इनके, जबरदस्त और वैरायटी बेताजा है। राजा बादशाह जी, जनाब राजा बादशाह के पास आप जाएं, अगर आपने आमिर की तरह 1775 डॉलर्स बचाने हैं, आप देखें वर्ल्ड टूर पे जा रहा है अब आमिर जो है, और इतने इसने पैसे बचा लिए हैं पिछले 2 महीने में। अगर आपके पास 2 गाड़ियां और 1 घर है तो आप इनके पास जरूर जाएं। ऑल स्टेट के साथ होते हैं, आजकल पिकरिंग में है लेकिन पूरे जीटीए में सर्विसेज देते हैं। इनका नंबर है 6472903773 एंड चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल, 1400 लोगों का फैसिलिटी है इनके पास, आप जबरदस्त किस्म के अपने प्राइवेट या के कॉरपोरेट इवेंट्स यहां पे कर सकते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनको कॉल कर लें जी 6479653823 के ऊपर, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर नेशनल असेंबली के जो स्पीकर हैं अयाज सादिक साहब, आज उन्होंने जो है बुलाया है और डांटा है इस्लामाबाद के आईजीपी सैयद अली नासिर रिजवी को, کیونکہ پی ٹی آئی کے جو پارلیمنٹیرینز تھے ان کو یہ پارلیمنٹ پریمیسز جو تھے اس سے پکڑ کر لے گئے تھے. ان کو کہا جی امیڈیٹلی ان سب کو ریلیز کرو. حالانکہ 10 لوگوں کو انہوں نے پکڑا ہے لیکن چھوڑا کچھ کوئی ہے. پی ٹی آئی کے لا میکرز جو تھے ان کو جو ہے جب یہ آ رہے تھے پارلیمنٹ کے پریمیسز میں انہوں نے ان کو پولیس نے ان کو چیز کیا, ان کو اریسٹ کیا اور ان کو جو ہے پکڑ کر پھر لے گئے. یہ انہوں نے آرڈر اس وقت دیا جب پی ٹی آئی کے لیڈر علی محمد خان نے بڑی فائری سپیچ کی پارلیمنٹ کے اندر. صادق صاحب نے کہا کہ میں بہت زیادہ مجھے افسوس ہے اس واقعے کی وجہ سے. اس کے علاوہ ان کو فوٹیج بھی دکھائی گئی پی ٹی آئی کے جو لیڈر جیسے شیر افضل مروت اور دوسروں کو جیسے اریسٹ کر کے لے کے جایا جا رہا تھا. اس کے اوپر ایاز صادق صاحب نے کہا یہ کیا طریقہ ہے لا میکرز کو اریسٹ کرنے کا, اور میں بالکل خاموش نہیں بیٹھوں گا, میں ایکشن لوں گا اور یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے اور ان سب کے خلاف جو ہے ایک کیس فائل کرنے کی ضرورت ہے جو کوئی کل کے انسیڈنٹ کے اندر انوالو ہے. اس کے علاوہ پھر انہوں نے کہا جی کہ فوراً میرے سامنے حاضری دیں آئی جی پولیس اسلام آباد کے, ڈی آئی جی آپریشنز اور سینئر ایس ایس پی آپریشنز. کے پی کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب جو تھے وہ اب پشاور پہنچ گئے ہیں, کیونکہ ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اب بالکل بھی جو ہے ان کا ریڈیو بھی سائلنٹ تھا اور ان کو جو ہے پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں گئے. بہرحال آج جس وقت وہ پہنچے پتہ یہی چل رہا تھا کہ شاید یہ جو کریک ڈاؤن کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے خلاف شاید اس میں ان کو بھی پکڑ کے لے گیا. لیکن ایم این اے شاید کھٹک جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں, چیف منسٹر صاحب جو ہیں اسلام آباد کی میں ریلی کے بعد جو ہیں وہیں پہ ویریس میٹنگز کے لیے رک گئے تھے جو کہ گورنمنٹ افیشلز کے ساتھ تھیں اور جو لا اینڈ آرڈر کا سچویشن تھا کے پی میں اس کے اوپر تھا. لیکن وہاں پہ جس علاقے میں میٹنگ ہو رہی تھی وہاں پہ جیمرز تھے, اس کے لیے ان کا فون نہیں مل رہا تھا. اس سے پہلے کے پی کے چیف منسٹر کے جو ایڈوائزر ہیں آن انفارمیشن بیرسٹر محمد علی سیف, انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو کسٹڈی میں لیا ہے اور امیڈیٹلی فائنڈ آؤٹ گورنمنٹ کرے کہ ان کے ویئر اباؤٹس, کیونکہ یہ چیف منسٹر ہیں علاقے کے, یہ کہاں پہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر جو ہیں جن کو کل پکڑ کے لے گئے تھے ان کو بھی آج ریلیز کیا گیا ہے اور ان کے خلاف جو ہے کیس رجسٹر کیا تھا سنگجیانی پولیس اسٹیشن کے اندر فار وائلیٹنگ ریگولیشنز ڈیوائسڈ انڈر نیو لا پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر بل 2024. جس وقت ان کو ریلیز کیا گیا تو گور صاحب نے بے تحاشا کنڈیم کیا پولیس ایکشن کو جو انہوں نے کیا کہ پارلیمنٹ ہاؤس سے کے پریمیسز سے پکڑ کے 10 پارٹی کے لا میکرز کو لے کر گئے. انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ جو سی سی ٹی وی کا فوٹیج ہے یہ ہم پبلک کریں گے. انہوں نے سپٹمبر 9 یعنی کہ کل کے دن کو ڈارک ڈے ان پاکستان ہسٹری کا, یار کتنے ڈارک ڈے تم لوگوں نے بنانے ہیں. لیڈرز جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کے لیڈرز جو ہیں ہم لوگ بڑی سختیاں اٹھا رہے ہیں پاکستان کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے اور ڈیموکریسی کے لیے, اور ہم اپنا رول پورا کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر آ رہے تھے اور ہمیں اٹھا کے لے کر گئے ہیں. یہ اس طرح کا یہ جو پرولونگڈ یہ ہے یہ جو کام ہے یہ بالکل صحیح نہیں, اور یہ کس نے کہا ہے کہ اگر ہم نے ریلی کے اندر کچھ تھوڑی دیر زیادہ کر لی ہے تو اس کے اندر جو ہے کوئی پرابلم ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پی ٹی آئی نے کہا جی کہ ہم اپنا اینٹی گورنمنٹ موومنٹ اور بالکل بھی روکیں گے نہیں. آج پی ٹی آئی کے لیڈر سلمان اکرم راجا پریس کانفرنس کر رہے تھے پشاور کے اندر, ان کے ساتھ تھے عمر ایوب خان اور اسد قیصر اور اعظم سواتی اور بھی بہت سارے لوگ. انہوں نے کہا جی کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے جو لوگ گورنمنٹ میں ہیں انہوں نے مس انڈرسٹینڈ کیا ہے لوگوں کو کہ یہ جو ہیں یہ کھڑے نہیں ہوں گے. وہ کھڑے ہوئے اور ہمارے ساتھ ریلی کے اندر آئے. اکرم راجا نے کہا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان کی کچھ لوگ پاکستان کی پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک پروسیس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہم ان کو بولتے ہیں بیک آف, اور پاکستانیوں کی آواز کو آپ روک نہیں سکتے ہیں. جب یہ بات کر رہے تھے تو جرنلسٹوں نے ان سے پوچھا کہ جی علی امین گنڈاپور صاحب کہاں ہیں, کیونکہ انہوں نے میڈیا کے خلاف بڑی باتیں کی ہیں ریلی کے اندر, تو وہ کیوں ایبسنٹ ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کو جو ہے وہ ان کی میٹنگ کیونکہ چل رہی تھی تو وہ نہیں آ سکے تھے. تو عمر صاحب نے کہا کہ نہیں نہیں وہ آئیں گے اور وہ آپ سے اپولوجائز کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑا بیش کیا گورنمنٹ کا. انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کی ریلیز کو یہ روکنے کی گورنمنٹ کوشش کرتی ہے, ہمارے خلاف جھوٹے بیان دیتی ہے اور ہمارے لیڈرز جو ہیں ان کو جیلوں میں ڈالتی ہے, اور سپٹمبر 9 کو میں بھی بلیک ڈے بولوں گا. اسد قیصر صاحب نے پھر بولا کہ جی پی ٹی آئی جو ہے اپنی فائٹ جاری رکھے گی اور لیگل بیٹلز کورٹ میں بھی کرتی رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ فوراً عمران خان اور دوسرے پارٹی لیڈرز جو ہیں ان کو چھوڑا جائے اور فریش الیکشنز کروائے جائیں, اور جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہے اس کا ان لیجیٹمیٹ پریزنس ہے جو کہ ختم ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی کہ اس کے علاوہ کورٹس کے اندر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس جو ہے اسلام آباد آئی جی اور اسلام آباد کے کمشنر کے خلاف ہونا چاہیے, کیونکہ جو انہوں نے بہت سارے یہ کنٹینر اور آبسٹیکلز ریلی کے راستے میں اسلام آباد میں کھڑے کیے تھے یہ بالکل جو ہے لا کے خلاف تھے. بھائی جان چیزاں پڑ گئی ہیں جی.
اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جو ہے جی پاکستان میں اس نے آج ایڈجرن کیے ہیں ہیئرنگ آف پلیز فائلڈ بائی عمران خان اینڈ ہز وائف بشرا بیوی ٹو ایکوئٹ دیم ان 190 million pound کیس ٹل سپٹمبر 12. آج یہ دونوں جو ہیں یہ اڈیالہ جیل میں جو عدالت سجائی جاتی ہے وہاں پہ یہ دونوں موجود تھے اور یہ ہیئرنگ چل رہی تھی جس کو کہ اینٹی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج ناصر جاوید رانا جو ہے وہ سن رہے تھے. عمران خان صاحب نے یہ فائل اپنی ایکوئٹل کی ڈالی تھی آفٹر سپریم کورٹ ورڈکٹ ان نیب امینڈمنٹ کیس. لاسٹ ویک کورٹ نے ریزرو کیا تھا ان کا ورڈکٹ آن بشرا بی بیز ایکوئٹل پلی. آج کی جو ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں لائرز نے جو تھے وہ آ نہیں سکے تھے کیونکہ ان کے دوسرے کچھ کمٹمنٹس تھے لاہور ہائی کورٹ میں اور اس لیے جو ہے اس میں انہوں نے جو یہ مین وٹنس تھا اس ریفرنس میں لاسٹ وٹنس ان فیکٹ میاں عمر ندیم اس کو وہ کراس ایگزامن نہیں کر سکے ہیں. لیکن اس موقع پہ اسسٹنٹ کاؤنسل ان کے تھے عمران خان اور ان کی وائف کے فیصل چودھری اور انہوں نے کہا جی کہ یہ کیس ایڈجرن کیا جائے لیکن نیب کے جو پروسیکیوشن کی جو ٹیم تھی اس نے اس کو جو تھا پھر ریجیکٹ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ پوری ان کی ٹیم آنے دیں اور اس کے اوپر بیس کراس ایگزامینیشن ہونے دیں اور پھر اس کے بعد جو ہے دیکھیں گے کہ اس کو نکالنا ہے کہ اس کو کہ نہیں. ہم نے بڑی خوشی منائی تھی جناب لاسٹ ویک, آپ کو پتا ہی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر صاحب جن کو کہ نادرا کا چیئرمین بنایا گیا تھا اور جو ایک سٹیزن تھے وہ ایک اپیل ان کے خلاف لے کر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ غلط ہے. آج جناب ساڈا لاہور ہائی کورٹ ہے جی, کوئی بھی کسی بھی قصے میں آپ پھنس گئے ہیں نا لاہور ہائی کورٹ میں پہنچ جائے. لاہور ہائی کورٹ نے سسپینڈ کیا ہے یہ لاسٹ ویک کا ورڈکٹ. ٹو ممبر بینچ آف جسٹسز چودھری محمد اقبال اینڈ ندیم احمد ندیم ارشد جو ہیں انہوں نے یہ انٹرا کورٹ اپیل سنی تھی جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ڈالی تھی اس سپٹمبر 6 کی رولنگ کے اگینسٹ جو کہ ڈیسیجن اناؤنس کیا تھا جسٹس آصم حفیظ نے آن دا کمپلینٹ آف سٹیزن اشبا کامران جنہوں نے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کیا تھا. پیٹیشن میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ کیئر ٹیکر جو ایک گورنمنٹ تھی انہوں نے ان کی اپوائنٹمنٹ کی تھی جبکہ وہ ایسا کر نہیں سکتے ہیں. یہ جو پرماننٹ پالیسی میٹرز ہوتے ہیں اس میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ یا انٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے وہ فیصلے نہیں دے سکتی ہے. گورنمنٹ کے لائر نے بتایا لاہور ہائی کورٹ کے کہ پٹیشنر جو ہیں انہوں نے تو کبھی ان کی جو ریکویسٹ تھی ایک تو لمیٹڈ تھی اور انہوں نے تو کبھی چیلنج نہیں کیا تھا نیو رولز کو. اس کے اوپر جو ہے کورٹ نے پھر کہا کہ جی ہاں ٹھیک ہے اس کو ہم سسپینڈ کرتے ہیں اور آج ان کو پھر سے ری انسٹیٹ کیا گیا ہے جی لیوٹیننٹ جنرل منیر افسر کو. مجھے تو لگتا ہے کہ اگر کوئی مقدس کوئی اور بھی پلیسز یہاں پہ ہوتے نا پاکستان میں تو ان کے بھی سب کے ہیڈ انہوں نے جو ہے فوجی لگا دینے تھے. مطلب ہے کوئی ادارہ چھوڑا نہیں ہے بھئی, اپنی 65, 66, 67 ایئر کی سروس کر کے وہ ریٹائر ہوتے ہیں ان کو ریٹائر ہونے دو. لوگوں کے پاس آلریڈی ملک میں امپلائمنٹ نہیں ہے, یہ ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں ان کو پھر اور بھی جگہوں پہ آپ لگا دیتے ہیں امبیسڈر بنا کے بھیج دیتے ہیں. فارن آفس میں لوگ مر گئے ہیں بھئی, آپ کے پاس فارن آفس کے لوگوں کو امبیسڈرز بنا کے بھیجو نا. یہ جو ادارے ہیں ان کے اوپر سویلینس کو لگاؤ, فوج کو اپنا کام کرنے دے. ہر جگہ پہ آپ نے فوجی لگا دینا ہے تو پھر کام کیسے آپ کا چلے گا. بارہ جی یہ انہوں نے جی واپس ان کو ری انسٹیٹ کر دیا. آج پاکستان ٹیلی کمیونیکیشنز اتھارٹی جو ہے پی ٹی اے انہوں نے آج کہا ہے جی کہ یہ جو ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک جس کو کہ وی پی این کہتے ہیں جن کے بارے میں ریومرز تھے کہ ان کو بلاک کیا گیا ہے پاکستان میں, انہوں نے کہا جی اس کو بالکل بلاک نہیں کیا گیا ہے. اور یہ جو ہیں آپ کو پتا ہی ہے کہ وی پی این ذرا تیزی سے کام کرتے ہیں اور جلدی سے جو ان کو جو میسیجز لوگوں کو بھیجنے ہوتے ہیں وہ بھیج سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو ہیں وہ انشور کرتا ہے وی پی این کہ جو آن لائن ایکسپیرینس ہے وہ پرائیویٹ اور پروٹیکٹڈ رہے اور اس کے اندر جو ہے وہ جو یوزر کا جو پرسنل ڈیٹا ہے وہ ہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں اس کے اندر ہوتا ہے. تو اسی لیے پاکستان میں بہت سارے لوگ اب وی پی این کرتے ہیں. ویسے بھی جو انٹرنیٹ کے بلاکیٹس اور سسپینشنز چل رہے ہیں اس کے ہوتے ہوئے یہ انہوں نے وی پی این کا طریقہ نکالا ہے. انٹرنیٹ ڈسٹرپشنز جو آپ کو پتا ہی ہیں بہت سارے پچھلے ویک سے چل رہی ہیں. اتھارٹیز جو ہیں انہوں نے بلیم کیا تھا فالٹی سب مرین کیبل کو اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ مسئلہ سارا ارلی اکتوبر میں حل ہوگا. اس کے بیچ میں لوگ پھر وی پی این یوز کر رہے تھے اور انہوں نے لوگوں نے کہا کہ شاید وی پی این کو بھی بلاک کر رہے ہیں, جس کی کہ آج جو ہے وہ ایکسپلینیشن پی ٹی اے نے دی ہے کہ وہ نہیں کر رہے ہیں. اچھا جناب ہندوستان میں بھی چیزیں گرمائی ہوئی ہیں اور ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ راہل گاندھی جی جو ہیں امریکہ پہنچے ہوئے ہیں. راہل گاندھی صاحب نے یہاں پہ کافی زیادہ بی جے پی اور اس کی آئیڈیالوجی اور جو آر ایس ایس کو یہ فالو کرتے ہیں اس کو کافی زیادہ جو ہے وہ اٹیک کیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو
ریلیجس اور لنگوسٹک اور کمیونٹیز بیسڈ جو ہم انفیریورٹی کمپلیکسز پیدا کر دیتے ہیں وہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. ہماری فائٹ جو ہے وہ انڈیا کے لیے ہے, پالیٹکس کے لیے نہیں ہے. یہ ایک گیدرنگ سے جو انڈین امریکنز کی تھی اس میں ڈی سی کے جو سبرب ہے ہینڈروڈ اس کے اندر یہ بات کر رہے تھے. 4 ڈے وزٹ پہ ہیں یہ یو ایس میں, اور وہاں پہ جو فرنٹ رو کے اندر ایک سکھ اٹینڈی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ جو جناب بیٹھے ہوئے ہیں ٹربن میں, آپ کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے اپنا نام بتایا. تو انہوں نے کہا جی کہ ہماری فائٹ ان سکھوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اپنا ٹربن پہنے اور اپنا کڑا پہنے. آپ کو پتا ہی ہے کہ یہ جو 5 آرٹیکلز ہیں سکھزم میں, ان میں یہ ٹربن اور کڑا ہے ان کا. تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو اس کے لیے فائٹ کر رہے ہیں. کیا آپ ایسا ہندوستان چاہتے ہیں کہ جس کے اندر آپ کو اپنے گردوارے میں نہ جا سکیں اور آپ کی یہ جو مقدس چیزیں ہیں اس کو نہ آپ پہن سکیں؟ اس کے اوپر ہندوستان کے اندر یونین منسٹر اور بی جے پی کے جو لیڈر ہیں ہردیپ سنگھ پوری, انہوں نے آج راہل گاندھی صاحب کے اوپر بڑا ہی اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کے جو ریمارکس ہیں سنسٹر ہیں, یعنی کہ بہت ہی گناونے ہیں, اور آپ کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے سکھ کے خلاف کہ جو ٹربنز اور کڑا پہنتے ہیں کہ وہ نہیں پہن سکیں گے, یہ بھی بالکل غلط ہے. انہوں نے کہا جی شاید آپ کو یاد نہیں ہے راہل گاندھی جی, 1984 کے جو اینٹی سکھ رائٹس ہوئے تھے وہ کانگریس کے رول میں ہوئے تھے. فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری ہماری جو کمیونٹی تھی اور جو سکھ تھے وہ سینس آف انسیکیورٹی, اینگزائٹی اور ایگزسٹینشل تھریٹ کے اندر رہتے تھے, اور یہ سارے کا سارا آپ کی فیملی نے کیا تھا. 1984 کا جو پروگرام تھا وہ پروگروم جو تھا وہ سکھوں کے اگینسٹ کیری کیا گیا تھا. 3000 انوسینٹ سکھ جو تھے اس میں مارے گئے تھے. سکھوں کو گھروں سے ڈریگ کیا جاتا تھا, ان کے گرد ٹائر باندھے جاتے تھے اور پھر ان کو آگ لگا دی جاتی تھی. آپ کیسے اتنے سینسٹیو ایشو کے اوپر اس طرح کے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ دے سکتے ہیں؟ آپ نیشنل آئیڈینٹیٹی, یونٹی اور اسٹرینتھ اور ہماری جو ڈائیورسٹی ہے اس کو خراب کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہو, اور آپ کا یہ جو نیریٹو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے. پوری صاحب نے کہا کہ جی آپ جھوٹ پھیلا رہے ہو جو وہاں پہ امریکہ میں رہنے والے سکھ ہیں ان کے اندر, کیونکہ وہ بڑے سمپل ہارڈ ورکنگ اور آنےسٹ لوگ ہیں, وہ آپ کی باتوں میں آپ ان کو لانا چاہتے ہو. گاندھی جی جو ہیں انہوں نے اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ ہندوستان کے اندر جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. آر ایس ایس ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بہت زیادہ ڈیمیج کر رہا ہے اور اپنی آر ایس ایس کی آئیڈیالوجیز جو ہے ہماری کتابوں کے اندر لا رہے ہیں, اور جتنی بھی ہماری بڑی یونیورسٹیاں ہیں ان میں بھی جو آر ایس ایس کے ساتھی وائس چانسلرز ہیں ان کو لگایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے اس طرح کا آئیڈیا آف انڈیا نہیں چاہتے ہیں کہ جس میں ایک پارٹی جو ہے رول کرے. ہم انڈیا کی ملٹیپلسٹی کے اوپر ہم بلیو کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر کسی کو اس موقع میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ بھی کرنا چاہیے اور ان اپرچونٹیز کا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے, تو جو کہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجیز نہیں دیتی ہیں اجازت جس کی. تو کافی گرما گرمی رہی جناب ان کی اسپیچ کے اوپر جو انہوں نے امریکہ میں کی. اور جناب آنے والے ہیں جموں اینڈ کشمیر کے اندر الیکشنز. فارمر جموں اینڈ کشمیر کے جو چیف منسٹر ہیں عمر عبداللہ صاحب, ان سے آج پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے کیوں یہ الائنس جو ہے کانگریس کے ساتھ بنائی ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہمارا یہ پرابلم ہے, ہم کو بنانی ہی پڑی ہے. اور ہندوستان کے اندر سوری جموں اینڈ کشمیر کے اندر جو ہے 3 فیزز کے اندر الیکشنز ہوئیں گے. پہلا فیز 18 سے شروع ہوگا, 2 سپٹمبر کو, اور تیسرا جو ہے 5 اکتوبر کو ہوئے گا, اور کاؤنٹنگ 8 اکتوبر کو ہوئے گی. انہوں نے کہا جی یہ بڑا وائٹل تھا کیونکہ ابھی جو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے جو میرے والد فاروق عبداللہ کے خلاف آرڈر جو ہائی کورٹ کا ہے وہ سٹرائک ڈاؤن کیا ہے, اس کے بعد لوگوں نے شاید یہ سمجھا اور ہمارے دشمنوں نے یہ بات پھیلائی کہ شاید ہم بی جے پی کے ساتھ کوئی ڈیل کر کے آئے ہیں. نیشنل کانفرنس یعنی کہ جو ان کی پارٹی ہے اس کی کوئی ڈیل بی جے پی کے ساتھ نہیں ہے. وی آر ناٹ ہینڈز ان گلوز ود بی جے پی, اور اس لیے ہمارے لیے امپورٹنٹ تھا کہ ہم کانگریس کے ساتھ جو ہے الائنس بنائیں. اس کے اوپر جو ہے اب محمودہ مفتی صاحبہ جو ہیں وہ بڑی بھڑک گئی ہیں. آپ کو پتا ہی ہے کہ پی ڈی پی جو تھی انہوں نے تو بڑے لمبے عرصے تک جس کو کہ اس کو پارٹی کو بنایا تھا 1919 میں محمودہ مفتی صاحب کے جو والد صاحب تھے مفتی محمد سعید نے, اور فار دا لانگسٹ پیریڈ یہ جو تھے کانگریس کے ساتھ رہے تھے, اور اس کے بعد یہ جیتے بھی تھے, اور پھر یہ انہوں نے الائنس جو 2002 میں بنائی تھی اس کی وجہ سے یہ چیف منسٹر بھی بنے تھے جموں اینڈ کشمیر کے. جس وقت یہ بنے تھے چیف منسٹر تو انہوں نے کافی پبلک کی سپورٹ پہ آئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا پاکستان کے بیچ میں ہم ایک ڈائلاگ جو ہے وہ بٹائیں گے, ان کے بیچ میں کراس بارڈر ٹائز جو تھے وہ بھی امپروو کیے تھے, اور نیو ڈیلی اور ٹیررسٹ جو سیپریٹسٹ لیڈر تھے ان کے بیچ میں ایک ڈائلاگ چل گیا تھا. یہ جو ہے چیزیں یہ پھر چلتی رہیں, 2008 और 2000 के पोल्स में भी पीडीपी को काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, खासतौर पे सदन कश्मीर में। लेकिन फिर जो है सदन कश्मीर में और ये जो एनसी का जो बल्कि स्ट्रांग होल्ड था श्रीनगर, उसके अंदर भी इन्होंने इनलेज बनाए। लेकिन पीडीपी का जो फैसला था 2014 में कि वो बीजेपी का साथ देंगे, वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लोगों को लगा, कश्मीर के लोगों को लगा कि पीडीपी ने इनके साथ धोखा किया है। और जो हालांकि मुफ्ती सईद ने बहुत ज्यादा इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी लोगों का डिसकंटेंटमेंट जो था वो नहीं गया था। और फिर जो इनकी अब डोमिनेंस जो है वो नहीं है, हालांकि अभी भी वन ऑफ द मेन पार्टीज हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि आने वाले इलेक्शंस में ये जीतेंगे। तो ये काफी वहां पे भी जो लैंडस्केप, पॉलिटिकल लैंडस्केप है, काफी चेंज हुआ है कश्मीर के अंदर भी। तो अब देखेंगे कि आने वाले इलेक्शंस में क्या होता है। वैसे भी इलेक्शंस ये बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत अरसे के बाद ये हुए हैं, स्पेशली आफ्टर स्ट्राइकिंग डाउन आर्टिकल 370, तो उसकी वजह से लोग काफी नाराज हैं। फिर मिलेंगे फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं शैलेंद्रा सिंह, उन्होंने हमारे सल्लू भाई की आज जनाब बड़ी जम के तारीफ की अपने इंस्टा के ऊपर। एक उन्होंने वीडियो डाला और उन्होंने कहा जी कि जब मैं फिल्म बना रहा था तो वो हाइव और एड्स के ऊपर था, तो जिस जिस बड़े स्टार के पास मैं बॉलीवुड में जाता था वो ना बोल देता था, फिर मैं सल्लू भाई के पास गया। तो आप सोचो कि एक फिल्म जो एड्स पे बनाई जा रही है और सल्लू भाई को तो लोग यहां पे टर्मिनेटर या रेनबो या सुपरमैन ऑफ इंडिया चाहते हैं, उसको मनाना कितना मुश्किल था। बट लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई कि मैं सल्लू के पास जिस वक्त गया, तो यानी कि सल्लू भाई के पास जब मैं गया तो वो फौरन मान गए, जबकि एंटायर बॉलीवुड जो था वो इस फिल्म से बैक आउट कर गया था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि सलमान खान ने इस फिल्म के लिए टोटल एक रुपया, एक पाकिस्तानी रुपया उसने चार्ज किया, क्योंकि उसने कहा कि यह फिल्म तुम सोशल मैसेज दे रहे हो, क्योंकि